नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन प्रक्रिया दोपहर 2 बजे पार्टी मुख्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में शुरू हुई। नामांकन प्रक्रिया शाम 4 बजे तक जारी रही। शाम 6 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषदों के प्रतिनिधियों से बने निर्विचारक समूह द्वारा किया जाता है। वर्तमान में ये पद केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के पास है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पोलैंड को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनानी चाहिए और भारत के पड़ोसी देशों में आतंकी ढांचे को बढ़ावा देने में मदद नहीं करनी चाहिए। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्वाफ शिरकोस्की के साथ आज नई दिल्ली में बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि पोलैंड के लिए भारतीय क्षेत्र अनजान नहीं है और वो सीमा पार आतंकवाद की दीर्घकालीन चुनौती से भलीभांति परिचित है। डॉ जयशंकर ने कहा कि हाल के समय में अमेरिका और फ्रांस में उन्होंने यूक्रेन संघर्ष और उसके प्रभावों के बारे में भारत का दृष्टिकोण साझा किया था।
पिछले वर्ष न्यूयॉर्क में और इस वर्ष जनवरी में पेरिस में हमने यूक्रेन संघर्ष और इसके प्रभावों पर खुलकर अपने विचार साझा किए हैं। हमने बार बार इस बात पर बल दिया है कि भारत को चुनिंदा रूप से निशाना बनाना अनुचित और अन्यायपूर्ण है और मैं आज फिर से इसे दोहरा रहा हूँ।
विदेश मंत्री ने कहा कि पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिरकोस्की के साथ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की गई। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने दोनों देशों के आर्थिक, तकनीकी, रक्षा, खनन और बहुपक्षीय सहयोग पर बातचीत शुरू हुई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इस दौरान वे भारत यूएई के व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और संयुक्त अरब अमीरात व्यापार, निवेश, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के स्थायी समिति की 88वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान स्थायी समिति ने संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव अभयारण्यों, बाघ अभयारण्यों और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं, रक्षा आवश्यकताओं और अवसंरचना विकास से संबंधित 70 प्रस्तावों पर विचार किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 0.7 अंक बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट में IMF ने कहा है कि यह वृद्धि इस वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में मजबूत गति को दर्शाती है। IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि 6.4% का अनुमान व्यक्त किया है। सरकार ने बताया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा 52,300 करोड़ रुपए से अधिक की 3 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME ऋण आवेदनों को स्वीकृत किया गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ऋण आवेदन पिछले वर्ष अप्रैल से दिसंबर के बीच स्वीकृत किए गए थे। टेलीमैक्स विकास केंद्र C.Dot को उसके सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संचार मंत्रालय ने बताया है कि यह पुरस्कार 104वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में प्रदान किया गया। सम्मेलन का विषय संसाधन विकसित भारत था। स्विट्जरलैंड के दावोस में 19 से 23 जनवरी तक होने वाले विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के 100 से अधिक मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व दुबई संस्कृति और कला प्राधिकरण के अध्यक्ष शेख लतीफा बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम करेंगी। दावोस में संयुक्त अरब अमीरात के एजेंडे में मानवीय विकास संबंधी मुद्दे प्रमुख रहेंगे। महिला प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। ये मैच वडोदरा में BCA स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में घने कोहरे की स्थिति का अनुमान लगाया है। विभाग ने हिमाचल प्रदेश में कल तक शीतलहर की स्थिति का भी अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।